फिर से हम एक गूगल मीट पर एकत्रित हो रहे हैं और हम स्वागत करते हैं हमारे जोनल प्रेसिडेंट मिसेस कोमल मागो का और हमारी जोनल वाइस प्रेसिडेंट मिसेस शीला तिवारी का और फैमिली वेलफेयर चेयरमैन चेयरपर्सन मिसेस रमा शर्मा का। और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के विवेकानंद शनभाग जी का, प्रभु जी, और मिसेस अर्चना शनभाग का। प्रभु जी पहले भी हमें शादी के विषय में और संबंध के विषय में, संबंधों को, नाजुक संबंधों को संभालने के विषय में काफी कुछ बता चुके हैं और आज हमें ये पेरेंटिंग के बारे में ज्ञान देंगे। और आज का वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं 615 AT ब्रिगेड से, तो ओवर टू गार्गी एंड हर टीम ऑफ 615 AT ब्रिगेड। गार्गी प्लीज, स्टेज इज योर्स।
थैंक यू मिसेस शिखा राठौर। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वेबिनार के दौरान अपना माइक म्यूट रखें और वेबिनार के स्मूथ रनिंग में हमारा पूरा सहयोग दें। वेबिनार के अंत में कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर या फिर अपना हैंड रेज कर अपनी टर्न आने पर अनम्यूट करके। नाउ कमिंग टू द वेबिनार, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। On behalf of Mrs. Komal Mago, Zonal President, Ava Chetan Kaur, we welcome our very special guest, Dr. Vivekananji Chandhar, Mrs. Archana Chandhar, and all of you to today's informative and enlightening webinar on the topic Good Parenting. Har mata pita ki khwahish hoti hai ki vah apne bachche ka behtar tarike se palan poshan kare, unka pura khayal rakhe. बच्चों को सही गलत सिखाने का सभी माता पिता के पास एक अलग तरीका होता है, लेकिन कभी कभी अनजाने में पेरेंट्स बच्चों के साथ या तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन जाते हैं। तो गुड पेरेंटिंग क्या है? क्या एज के साथ पेरेंटिंग स्टाइल्स चेंज होने चाहिए? एक रोल मॉडल पेरेंट कैसे बने? ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर तथा गुड पेरेंटिंग पर चर्चा आज होगी इस वेबिनार में। लेकिन उससे पहले मैं हमारे एस्टीम स्पीकर डॉक्टर एंड मिसेस विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अगर मैं इनकी सारी उपलब्धियों के बारे में बताना शुरू करूंगी तो दो दिन का वेबिनार भी कम पड़ जाएगा। थोड़ी ब्रीफ में कोशिश की है और अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो जाए तो प्लीज मेरी माफी एक्सेप्ट कीजिए प्रभु जी। डॉक्टर विवेकानंद जी, जिन्हें विश्व रूप दास के नाम से ही जाना जाता है, इज अ हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल काउंसलर। इन्होंने देश और विदेश दोनों ही जगह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है और श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, जिनके अंडर अभी 13 हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। आप भक्ति वेदांता हॉस्पिटल्स के डिप्टी डायरेक्टर होने के साथ साथ स्पिरिचुअल केयर ट्रेनर एंड एजुकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मथुरा में आपके द्वारा आई सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं और पिछले ऑलमोस्ट 28 सालों से हर वर्ष 4,000 से अधिक आई सर्जरीज बरसाना में आप करवा रहे हैं। आपके साथ मिसेस अर्चना शानभाग, जिनको रेवरेंडली एड्रेस किया जाता है एज ब्रजेश्वरी देवी जी, 35 साल से वैवाहिक जीवन में है। वह भी एक बहुत सीनियर स्पिरिचुअल काउंसिलर होने के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ हाउसवाइफ एंड अ डेडिकेटेड मदर, ये स्पिरिचुअलिज्म को प्रैक्टिस करती हैं और हमारी जैसी अनेकों फैमिलीज को गाइड भी करती हैं और मेंटोर भी हैं। वी आर ब्लेस्ड टुडे टू हैव यू इन आवर टुडेज वेबिनार। आई हैंड ओवर द प्लेटफॉर्म टू यू फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। ओवर टू यू डॉक्टर एंड मिसेस विवेकानंद।
हरे कृष्णा। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? गार्गी जी, मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? नहीं आ रही।
प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है, मैं आपसे
रिक्वेस्ट जी। हाय, हरे कृष्णा। सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है अभी? ओके। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद अदा करूंगा, कृतज्ञता व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपने मुझे आपके बीच में बैठकर कुछ बोलने का मौका दिया। और मेरे परम प्रिय गुरु महाराज और श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी, इन सबकी मैं कृपा याचना करता हूं कि आपके समक्ष मैं कुछ गृहस्थी जीवन के विषय में और पेरेंटिंग यानी उत्तम पालक कैसे बने उसके विषय में कुछ विचार रखूं। मेरे खुद के विवाह को अभी 35 साल हो चुके हैं और मुझे दो बेटियां हैं। और ये बताना जरूरी इसलिए है कि आपको पता चलेगा कि कौन से बैकग्राउंड से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी जो है वो 33 साल की है और जिसकी शादी होकर अभी 7 साल पूरे हो चुके हैं। और मेरी छोटी बेटी जो है वो 19 साल की है और वो अपने जन्म से ही बेड रिडन है, क्योंकि उसका जन्म से ही 40% ब्रेन डैमेज हुआ है और वो उस समय से अभी तक केवल 6 महीने की उम्र की है और वो बेड पे है। तो ये मेरे फैमिली का बैकग्राउंड है। और मेरी पत्नी फुल टाइम उन्होंने मिलकर दोनों लड़कियों की परवरिश की है। और थोड़ा सा साउंड को जरा कंट्रोल कीजिए, अच्छा रहेगा बहुत। रंगस्वामी, इनका साउंड जरा बंद कर दीजिए आप। सो ये बैकग्राउंड के साथ में एक नॉर्मल बेटी का परवरिश हमने की है और एक चैलेंज चाइल्ड दिव्यांग बालिका का अभी परवरिश अभी भी हो रही है। दोनों अपने अपने विषय में एक चैलेंज है। एक नॉर्मल बेटी को संस्कार देना और एक उत्तम नागरिक बनाना, उत्तम पत्नी, उत्तम बहन, उत्तम बहू, इस प्रकार के मतलब डॉटर इन लॉ, डॉटर एंड वाइफ, ऐसे अनेक प्रकार के रोल अदा करने हैं। वो एक कलाकार भी है, तो संगीतज्ञ है, वो बहुत संगीत विशारद क्लासिकल वोकल में गाती है। संस्कृत में उसने एमए किया है, लेक्चरर भी है वो और वायलिन प्लेयर है, बहुत अच्छी केक बेकर भी है। सो ये सब ही चीज़ों को बचपन से ही प्रोत्साहन दिया गया था। एनीवेज, आज का हमारा जो आज की जो हमारी चर्चा है वो आपको पहले प्लेटफॉर्म बताना चाहिए कि हमारी चर्चा वैदिक संस्कृति के ज्ञान पर आधारित है। वो हमारा जीरो लेवल है। हाँ, जैसे कि हम जब ये कह रहे हैं सब कुछ गृहस्थ जीवन के बारे में और अच्छे पेरेंट्स बनने के विषय में, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आप सब लोग वैदिक संस्कृति में विश्वास रखते हैं। और ये भी हम एज्यूम करते हैं कि आप लोगों को सबको भगवान पर श्रद्धा है। और ये भी एज्यूम करते हैं कि आप सब लोग भगवान के विषय में वैदिक संस्कृति के आधार पर अपने बच्चों को परवरिश देना चाहते हैं। क्योंकि ये अगर प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया तो फिर हमारे विचारों का संघर्ष नहीं होगा, हमारे विचार एक दिशा में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि पुरुष और स्त्री को विवाह बंधन में तब तब आना है जब वो ये विश्वास रखते हैं कि हम दोनों को मिलकर भगवान की प्राप्ति करनी है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ यानी गृहस्थ जो गृह में रहता है यानी कि शादीशुदा व्यक्ति, और आश्रम यानी आश्रम वो जगह है जहां पर भगवान की सेवा होती है। आश्रम का मतलब ये नहीं कि केवल मंदिर और ब्रह्मचारी, आश्रम वो स्थान है जहां पर केंद्र स्थान में भगवान होते हैं और वो जो निवास करने वाले लोग हैं उसमें चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वो सब मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को केंद्र स्थान में रखते हैं, अपने आप को सेवक मानते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में पुरुष और स्त्री विवाह बंधन में तब आते हैं जब दोनों को ये विश्वास है कि हमें दोनों मिलकर भगवान की सेवा करनी है। और एक पुरुष को पत्नी को स्वीकार करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक पत्नी को वो भगवान के रास्तों में प्रोत्साहन देने के योग्य न हो, तो उसके बिना उसको विवाह करने का अधिकार नहीं। इसलिए विवाह करने के पहले पुरुषों को भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग मिलती है कि विवाह संस्था में प्रवेश करने के पहले क्या क्या समझना चाहिए, और जब वो आने वाली स्त्री को पत्नी बनाकर उसको भगवान के रास्ते में प्रोत्साहन देने में समर्थ हो जाएगा तब उसे विवाह करने का अधिकार दिया गया। उसके आगे पति और पत्नी बनने के बाद में संतान उत्पन्न करने का अधिकार उनको है जो ये अधिकार या समर्थ रखते हैं, जिन्हें जिसके द्वारा वो अपने होने वाले संतान को भगवान के रास्ते में रखे। भागवत श्रीमद् भागवत में श्लोक है उसके प्रति कि जब तक हमारे ऊपर निर्भर जो व्यक्ति हैं, जैसे राजा के लिए प्रजा, गुरु के लिए शिष्यगण, पति पत्नी के लिए संतान या बूढ़े माता पिता, जो भी हमारे ऊपर निर्भर है, यहाँ तक कि हमारे घर में जो नौकर है जो हमारे लिए पूरे समर्पित है, हमारे घर में रहते हैं, हमारे ऊपर ही आधारित है, हमारी ही सेवा करते हैं, उनको भी भगवान के रास्ते में प्रोत्साहन देने की क्षमता नहीं होगी तो हमें संतान उत्पन्न करने की कोई अधिकारी नहीं। शास्त्र ने दिया है, शास्त्र ने अधिकारी नहीं दिया है कि हम संतान उत्पन्न करें, क्योंकि इस सामर्थ्य के बिना अगर हम संतान उत्पन्न करते हैं तो सॉरी टू से जानवर भी बच्चों को जन्म देते हैं, तो उसमें हमें कोई अंतर नहीं बचता जब तक संस्कार नहीं होते हैं। इन सब चीजों को हम एक अच्छा नाम दे सकते हैं, संस्कार। जब हमारे अंदर संस्कार है तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। मनुष्य जीवन माइनस संस्कार इज इक्वल टू एनिमल लाइफ, पशु जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें संस्कार की संभावना है। पशु जीवन में, पंछी जीवन में, मछली जीवन में, पेड़ जीवन में कहीं भी संस्कार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा जीवन जो मनुष्य जीवन है उसको भाग्यशाली जीवन माना गया है। तो इसलिए ये हमारे क्वालिफिकेशंस है एक पति बनने के लिए या पत्नी बनने के लिए, और एक पिता बनने के लिए या माता बनने के लिए, ये हमारे क्वालिफिकेशंस है। और अगर हम ये समझते हैं तो फिर हमारा ये जो कर्तव्य है हम ये अच्छी तरह से निभा पाएंगे। तो सबसे पहले बालकों को जन्म देने के पहले हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में गर्भाधान संस्कार होता है। इसका अर्थ होता यह है कि गर्भ पुरुष माता को यानी पत्नी को दान देगा, यानी उसके गर्भ में बालक वो रखेगा अपने विधि के माध्यम से। तो उसके लिए विधि होते हैं, उसके लिए मैं स्वयं पुरोहित भी हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर और मैं ये सब सीखा हूँ और पौरोहित्य भी करता हूँ। तो गर्भाधान संस्कार में बहुत सारे विधि होते हैं, उसमें एक उच्च प्रकार की संतान, उच्च प्रकार के आत्मा हमारे पत्नी के गर्भ में प्रवेश करे और स्थापन हो जाए, ये वो विधि होती है। इसका मतलब जो क्षत्रिय वृत्ति के हैं उनको क्षत्रिय वृत्ति का ही पुत्र प्राप्त होगा, जो ब्राह्मण वृत्ति के हैं उनको ब्राह्मण वृत्ति का आत्मा बालक के रूप में प्राप्त होगी, और जो वैश्य हैं जो व्यवहार करते हैं बिजनेस करते हैं उनको उनके ही अनुकूल आत्मा प्राप्त होगी संतान के रूप में, इसके लिए विधि होता है। उसके पश्चात में सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, जो गर्भाशय में बालक प्रवेश करके अभी 4 महीने हो चुके हैं या तो 6 महीने हो चुके हैं या तो 8 महीने हो चुके हैं, इस दौरान 4th महीने में, 6th महीने में या 8th महीने में वो संस्कार होता है, जिसमें बहुत सारी पौष्टिक वनस्पतियाँ होती हैं, पौष्टिक वस्तुएं होती हैं, आध्यात्मिकली स्पिरिचुअली पावरफुल चीज़ें होती हैं जिनसे हम उस माता के गर्भ को पुष्टि देते हैं, उसकी मांग के माध्यम से, सीमांत उसको मांग कहते हैं, उसके मांग के माध्यम से उसके गर्भ को शक्ति देते हैं, गर्भाशय को पुष्टि देते हैं, जिससे जो भी राक्षस भूत प्रेत पीड़ा जो भी कुछ है जो बालक को गर्भ में कष्ट दे सकता है उनसे हम उसको सुरक्षित करते हैं। आध्यात्मिक संस्कार भी देते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं उसके अंदर। उसके पश्चात जब डिलीवरी होती है तो उस समय नाभि संस्कार होता है, जब उसके नाल हम काटते हैं ना वहाँ पर हम कुछ मंत्र बोलते हैं, और उसमें ही जाति संस्कार होते हैं, मेधा संस्कार भी होता है। उसके जिह्वा के अग्र पर हम मन से ओम लिखते हैं, वो भी सोने की अंगूठी में जो मधु में डुबाकर उसमें भगवत गीता का या तो पूरे 18 अध्याय या तो 9वां अध्याय या तो 15वां अध्याय जो भी समय मिलता वैसे, लेकिन भगवत गीता का एक अध्याय कहते हुए उस मधु को सिद्ध करते हैं और उसमें अंगूठी में सोने की अंगूठी डुबाकर वो बालक के नवजात अभी जिसका जन्म हो चुका है उसके बालक के जिह्वा के अग्र में ओम लिखते हैं मन से, और वो मंत्र कहते हैं कि इसे आपकी यानी भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी श्रेष्ठ बुद्धि सद असद विवेक बुद्धि सार असार विवेक बुद्धि आवश्यक है वो भगवान इसको आप प्रदान करें, इसको मेधा प्रदान करें यानी बुद्धि प्रदान करें। तो वो कहता है सुमेधा हो जाएगा, मतलब बुद्धिमान बालक हो जाएगा। उसके बाद में उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है, इसको 6 महीने के बाद उसको भगवान का खीर प्रसाद बहुत सुंदर यज्ञ के साथ हवन के साथ में उसको दिया जाता है ताकि उसका पहला अन्नप्राशन जो है वो भगवान का प्रसाद हो, महाप्रसाद हो। तब तक माता का दूध उसको पिलाते हैं, 6 महीने तक कुछ नहीं देते, केवल मेडिकली भी हम जानते हैं कि 6 महीने तक माता का जो दूध है वो पर्याप्त है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है, जल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स जो भी पर्याप्त मात्रा में, माता कितनी भी दुबली लगने में दुबली लगते हो फिर भी उसके क्षमता है कि बेटे के पोषण के लिए श्रेष्ठ प्रकार के मूल्य जो तत्व हैं वो दूध के माध्यम से दे सकते हैं। अभी ये दूध प्राशन का जो काल है उसमें भी बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं और मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई लैक्टेटिंग मदर हो, अभी स्तनपान कराने वाली माता हो, बालक छोटे हो आपके, तो आपको सबको बालकों को एक्सक्लूसिवली दूध देना चाहिए। मतलब अभी कोई टीवी देख रहा है, कोई बातें कर रहे हैं सासू जी से या पति से या कोई फ्रेंड से या फोन पे बात चल रही है, इस तरह से दुग्धपान बालक को नहीं कराना चाहिए। एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, आंखें बंद करके कमरे में जाकर एकांत में भगवान का ध्यान करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए बालक को दुग्धपान कराना चाहिए। ये भी एक बहुत ही पावरफुल संस्कार है, मतलब अपने दुग्ध के माध्यम से स्तनपान के माध्यम से माता अपने बालक को श्रेष्ठ संस्कार सूक्ष्म रूप से दिव्य रूप से दे सकती है। इसीलिए वो गर्भवती काल में भी बहुत सारा हमारे संस्कृति में हमारे संप्रदाय में बहुत सारे नियम है कि गर्भवती समय में भी माता को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सबका बड़ा विधान है, वो एक अलग विषय है, आपको चाहे तो हम उसको अलग सेमिनार कर सकते हैं। लेकिन तात्पर्य में सारांश में कहने की बात यह है कि बालक आपको सबको बालक कैसे चाहिए, स्कूल में फर्स्ट आने वाला चाहिए, सबको अपना बालक सुंदर चाहिए, सबको अपना बालक हेल्दी चाहिए, बहुत स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, गाने में भी अच्छा होना चाहिए, सब कभी बेटे गा लो तुरंत गाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसे हमारी सब आइडियल होती है अपेक्षा। लेकिन वो आइडियल अपेक्षाओं के लिए गर्भ में भी संस्कार दे सकते हैं। थोड़ा सा उनको साइलेंट कीजिए, एसके यादव आप सब लोग साइलेंट हो जाइए तो अच्छा रहेगा जरा। तो ये सारे संस्कार हम बालकों को गर्भ में भी दे सकते हैं। मैंने एक पूरा एक कोर्स किया था जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था, इन्फंट सिद्ध प्रोग्राम ISP, ऋषि प्रभाकर के आश्रम में जाकर मैंने वो कोर्स किया था, बहुत ही सुंदर कोर्स है, कई चीजें पता चली उसमें कि 90% संस्कार माता अपने बालक को गर्भ में ही दे सकती है। आपको समझो भी, फॉर एग्जांपल मुझे एक अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है कि एक आप जैसे आर्मी में काम करने वाले आर्मी सोल्जर की पत्नी, जो पति उसका लेफ्टिनेंट जनरल था अमेरिका में, तो उसने पूरे गर्भवती अवस्था में बालक से बात किया। ये भी एक नई इनोवेटिव कल्पना है कि आप बालक से बात कर सकते हैं, Day 1 से बात कर सकते हैं, हाँ, और आपकी बातें और प्रभावी होंगी जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी। तो Day 1 से उसने बालक को बताया कि आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, इस प्रकार से उसको संस्कार दिए और 21वें उम्र में वो लड़का जो था वो लेफ्टिनेंट कर्नल बना क्योंकि उसका संकल्प इतना दृढ़ था और उसके जो पेट के अंदर परवरिश, उसके बाहर आने के बाद में परवरिश, इस तरह से उसको उसने मजबूत दृढ़ और साहसी बनाया कि उसका भी लक्ष्य बना जीवन का, मुझे आर्मी में इस पद को प्राप्त करना है। सारी ट्रेनिंग उसने कर ली और 21वें उम्र में वो साल में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अपने बालक को गणित सिखा सकते हैं गर्भ में, आप अपने बालक को संगीत सिखा सकते हैं। जैसा वातावरण आप बनाएंगे गर्भवती माता के लिए, वैसे वैसे संस्कार उसको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे और 90% उसका व्यक्तित्व गर्भ के अंदर ही बनेगा। फिर बचा हुआ जो 10% है उसका 6% जो है वो पहले 6 महीने में आपको प्राप्त हो जाएगा बालक को, और बचा हुआ 4% जो है वो आपका एजुकेशन है। कोई पंजाबी है तो फिर ये कल्चर सीखेगा, कोई साउथ इंडियन है तो वो कल्चर सीखेगा, वो सब उसका डेकोरेशन है। मतलब मूर्ति आपको दे दी गई है, आप उसको मुकुट पहना रहे हो, दुपट्टा पहना रहे हो और फूल चढ़ा रहे हो, जो भी कुछ है उसके बाद की बात है, मूर्ति ऑलरेडी बन चुकी है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति को पालन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत पहले से हम शुरू करते हैं, बहुत पहले से। अभी मैंने कई ऐसे कपल्स को हैंडल किया है जिसमें गर्भवती अवस्था में पति पत्नी के बहुत भयंकर झगड़े और शारीरिक मारामारी भी हो गई है। तो मैंने उन बालकों को देखा है कि वो हमेशा क्रैंकी रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्योंकि माता को जो भी अनुभव प्राप्त हुआ है गर्भवती अवस्था में वो बच्चे के सबकॉन्शियस में घुस जाता है। जो भी माता को आपने बुरे अच्छे अनुभव दे दिए हैं पति के द्वारा या सासू के द्वारा या एनवायरमेंट के द्वारा, समझो युद्ध हो रहा है किसी कंट्री में और एक कोई स्त्री गर्भवती है तो बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, किसी की मौत हो रही है, ऐसी अवस्था में कोई पति और सासू बुरे नहीं है लेकिन वो स्थिति ऐसी है, विकट स्थिति है, असुरक्षित स्थिति है, तो वो सारी भावनाएं जो है वो बालक के अंदर प्रवेश करते हैं और उसी प्रकार के बालक का व्यक्तिमत्व बनता है, उसी प्रकार की उसकी विचारधाराएं बनती है। इसलिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ पेरेंटिंग करके GPI करके एक संस्था है बड़ी विश्व में, ग्लोबल पेरेंटिंग इनिशिएटिव GPI, उसमें सारी गर्भवती माताओं को सुरक्षित अच्छी तरह सुपोषित वातावरण दिया जाए, ये उसका एम है। क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गर्भवती माताओं के लिए बहुत बुरा माहौल है, इसलिए अगर आपको नेता निर्माण करना है, कोई सुदृढ़ विचारवंत निर्माण करना है, कोई वैज्ञानिक निर्माण करना है, कोई सोल्जर निर्माण करना है, कोई देशभक्त निर्माण करना है, कोई संगीतज्ञ निर्माण करना है, तो बचपन से गर्भवती अवस्था में से माता को संतुष्टि, आनंद, प्रेम और सुरक्षित वातावरण देना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों के संस्कार तब से आरंभ होते हैं, और हमको लगता है कि हम बच्चों को जन्म देने के बाद में सिखाएंगे कि उसको क्या बनना है, लेकिन आपका जो व्यक्तिमत्व है और आपके पति का जो व्यक्तिमत्व है वो दोनों से मिलकर उसके अनुकूल आत्मा आपके गर्भ में आती है, और 9 महीने माता किस प्रकार से बिताती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 9 महीने माता केवल समझो TV देख रही है और TV में कोई खून खराबा, मर्डर, ये रेप, ऐसे खतरनाक पिक्चर देख रहे हैं और उसको सपने भी ऐसे ही रात को आ रहे हैं समझो, या वेस्टर्न वर्ल्ड में माता शराब भी पीती है प्रेगनेंसी में, सिगरेट भी पीती है और डिस्को में भी जाती है जब तक डांस कर सकती है, ऐसे वातावरण में जाती है जहाँ पर इतना सात्विक वातावरण नहीं है, तो वो सारे वातावरण जो इच्छा से या जबरदस्ती से माता के पास उपलब्ध हैं वो सारे वातावरण का प्रत्यक्ष परिणाम उन बालकों पर होता है। इसलिए ये सारी ट्रेनिंग हमारी कब से होती है, जब से विवाह होता है ना तब से हमारे संस्कार आरंभ होते हैं। देखो हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, विवाह भी बहुत ही अच्छी तरह से 16 विधि के द्वारा विवाह संपन्न होता है, ताकि हम समझें कि हम केवल कुत्ता बिल्ली की तरह एकत्र नहीं हो रहे, हम पति पत्नी मनुष्य एकत्र हो रहे हैं, विवाह संस्था के अंदर आ रहे हैं जिससे हम अच्छी संतान उत्पन्न करके समाज को देंगे, जो संतान हमारे समाज के लिए एक कल्याणकारी संतान होगी, समाज में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगी वो। अगर वो स्वयं असुरक्षित संतान है तो वो खुद को ही मैनेज करने के लिए जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संतान बिल्कुल प्रेम से भरी, प्रेम प्राप्त की हुई, संस्कार प्राप्त की हुई, जब बड़े हो जाएगी हमारी संतान, हमारे बालक पुरुष कन्या लड़का लड़की, तो वो समाज के लिए एक गर्व बने, हमारे लिए बनेंगे लेकिन समाज के लिए भी एक अच्छा गर्व बने कि मेरे पुत्र ने कुछ समाज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, समाज का नुकसान नहीं किया है। तो संस्कार के बिना जो जन्म होता है वो अधिकतर समाज को नुकसान पहुंचाने वाले बन जाते हैं। जब संस्कार प्राप्त करते हैं तो समाज को मदद करने वाले, समाज को पुष्टि देने वाले, समाज का कल्याण करने वाले जीव उत्पन्न होते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों का ये विश्वास होगा कि मेरा जो पुत्र या पुत्री होगी, हाँ पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरा जो पुत्र या पुत्री होगी वो समाज के लिए कुछ कल्याणकारी बने, ऐसे हर माता के मन में विचार होता है। और जब वो वैसे बन जाते हैं तो आपका सीना गर्व से फूल जाता है कि मेरी ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये लोगों के लिए इतनी सहायता कर रहे हैं, ये लोगों के लिए इतना कल्याण कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेरणा स्रोत हैं, दिस इज आइडियल एग्जाम्पल। तो यहां से हमारी संतान उत्पन्न होने का तो ये मार्ग शुरू होता है, फिर संस्कार देते हैं उनको, फिर हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व कैसा है उसका, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो हमें हमेशा क्या सोचते हैं, पर्सनालिटी का मतलब क्या है, दिखने में बहुत हैंडसम है, उसकी छाती 56 इंच की है, हाँ बहुत नाक उसकी स्ट्रेट है, आंखें बहुत तेज है उसकी, दिमाग भी तेज है, ये व्यक्तिमत्व का डेफिनेशन नहीं है। पर्सनालिटी का डेफिनेशन ये है कि उसके विचारधारा कैसी है उसकी, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस, क्या वो कंपैशनेट है, करुणामय है दूसरे के प्रति, क्या वो दयामय है, क्या वो नम्र है, क्या वो सहनशील है, क्या वो मिलनसार है, क्या वो आदरपूर्ण है दूसरों के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए, सबके लिए आदरपूर्णता है क्या उसके अंदर, क्या उसको भगवान में श्रद्धा है, हमेशा वो दूसरों को मदद करने के लिए तत्पर रहता है कि नहीं रहता है, ये उसके व्यक्तिमत्व के पहलू हैं। बाकी जो डॉक्टर नर्स या इंजीनियर या आर्मी या और जो भी बनेगा वो उसके अलंकार है, उसके माध्यम से वो मदद करेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे सब लोगों की सहायता करनी है, सभी पीड़ितों को पीड़ा से मुक्त करना है। अगर उसको पता नहीं होगा तो डॉक्टर बनने के बाद लोगों को लूटेगा वो, ही विल यूज हिज मेडिकल प्रोफेशन टू लूट पीपल, है ना। जैसे आतंकवादी लोग कैसे अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग लोगों का विनाश करने के लिए करते हैं, तो बुद्धि को संस्कार नहीं दिया गया, बुद्धि बहुत है लेकिन बुद्धि को कैसे उपयोग करना है वो उसका ज्ञान नहीं दिया गया है, वो संस्कार नहीं मिले उनको, यही बताया गया है बस इन लोगों को काटो मारो तो आपको भगवान अपने स्वर्ग में स्थान देंगे, तो ये संस्कार उनको प्राप्त है, इसलिए वो आतंकवादी बना हुआ है। और हमारे संस्कार क्या कहते हैं, सबको मदद करो। आज भी भारत ने अफगानिस्तान से कितने लोगों को बचा कर लाया है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है ये, दिस इज द कल्चर ऑफ द होल कंट्री टू सेव पीपल, टू हेल्प पीपल, टू प्रोवाइड सुरक्षा। सो ये सब कब से होता है, ये हमारी भूमि का कल्चर है, ये हमारे देश में जन्म लेने का कल्चर है, उसके बाद में माता पिता क्या दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे आप सब लोग आर्मी सोल्जर्स की पत्नियां हैं तो आप सब अपने बालकों को साहस सिखाएंगे, धीरज सिखाएंगे, हाँ निडर बनाएंगे उसको, अभी डरना नहीं बेटा, हर संकट में सामना करना है, खड़े रहना है, कितने भी हम जख्मी हो जाएंगे तो खड़े रहकर आपको युद्ध करना है, लड़ना है आपको, कभी डरपोक नहीं बनना है। तो ये एक प्रकार का संस्कार है, लेकिन साथ साथ सहिष्णुता, नम्रता और दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति। हमारे शिवाजी महाराज ने तो दुश्मनों के पत्नियों को भी क्या कहते हैं उसको, साड़ी और ब्लाउज पीस और अलंकार देकर पालकी में भेजा था, जो दुश्मनों की जो पत्नियां प्राप्त हुई थी, कभी किसी प्रकार से कैप्चर हो गई थी, तो सोल्जर लोगों को लग रहा था कि हमारे राजा उनको पनिशमेंट देंगे या मार डालेंगे, लेकिन राजा शिवाजी महाराज ने कहा था कि हमारी माँ है, हमारा शत्रुत्व किसी व्यक्ति से है लेकिन इनसे कोई शत्रुत्व नहीं है, वो हमारी माँ की तरह है, इसलिए हमारे घर में ना वो गोद भरते हैं ना, वो गोद भराई करके उनको साड़ी, ब्लाउज पीस, नारियल, अलंकार, दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक माता कहकर उनको पालकी में बिठा के घर भेजा है उन्होंने। ये संस्कार अगर जीजा माता ना दी थी तो शिवाजी ने भी, जैसे वो लोग करते हैं, काफिर लोग कैसे करते हैं, वो सोल्जर्स की पत्नियों पर रेप करते हैं, हर प्रकार से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है उनके पास। हमारे देश में लड़ाई तत्वों की होती है, शरीर की लड़ाई नहीं होती है। तो ये सारे संस्कार माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, याद रखना इस बात को। सबसे पहले माता गर्भ में संस्कार देती है, उसके बाद पिता संस्कार देते हैं, उसके बाद में दादी माँ, दादाजी संस्कार देते हैं, उसके बाद पड़ोसी संस्कार देते हैं, उसके बाद मित्र संस्कार देते हैं, उसके बाद समाज संस्कार देते हैं, उसके बाद राज्य संस्कार देते हैं, उसके बाद देश संस्कार देता है। मिसेस रीना प्लीज अपना साउंड बंद कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक स्त्री या पुरुष को बनाने में इतने स्तर का संस्कार आवश्यक है। देखिए मैंने कहा ना, माता, फिर पिता, दादा दादी, नाना नानी, फिर भाई बहन, फिर बिल्डिंग, फिर आपका परिसर, आपका वातावरण, फिर आपका समाज, फिर आपका राज्य, फिर आपका देश। इतने लोगों की आवश्यकता है जो हर एक व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर। उसको क्या बनना है, उसको क्या सोचना है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये मूलभूत बातें अगर हम नहीं समझेंगे तो हम ये पूछते रहेंगे, अरे मेरा बालक ऐसे कैसे बना, व्हाई माय चाइल्ड इज लाइक दिस, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं था, फ्रॉम वेयर ही हैज लर्न्ड। क्योंकि हम लोग बेसिक्स को नहीं समझे, सूक्ष्म बात को नहीं समझे, खाली बाहर बाहर देख रहे हैं। हाँ मेरे से दिखता है ये, इसकी नाक मेरे जैसी है, इसकी आंखें पति जैसी है, इसी की बात करते हैं हम अपने सूक्ष्म शरीर जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है उसके विषय में सोचते नहीं है कि वो जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका स्वभाव है, वो कहां से आया है। तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि अगर पेड़ सही नहीं होगा तो उसका फल सही नहीं आएगा। आप देखिए, आप पेड़ बोते हो, पेड़ को रोग लग गया है तो फल भी ना रोगी होंगे, फल भी दूषित होंगे। तो सबसे पहले हमको पेड़ को सही करना है, रोग मुक्त करना है, तब वो फल देगा, वो सुदृढ़ होगा, आरोग्य संपन्न होगा, पोषण देने वाला होगा। उसी प्रकार से अगर हमारी चेतना, माता पिता की चेतना अगर सही नहीं है तो बच्चे की चेतना सही कैसे होगी। हाँ, जो पानी कुएं में है वही बाल्टी में आएगा। मराठी में हमारे कहावत है कि अगर कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी में कहां से आएगा, और अगर कुएं में गंदा पानी है तो बाल्टी में भी गंदा पानी आएगा। आप हाउ यू एक्सपेक्ट कि कुएं में गंदा पानी है तो बाल्टी में स्वच्छ पानी आएगा, हाउ इट इज पॉसिबल। जिस सोर्स से आप पानी ले रहे हो वो अच्छा होगा तो ही बाल्टी में अच्छा पानी आएगा। इसी तरह से अगर मैं एक पिता हूं और मेरी पत्नी एक माता है, अगर हमारे दोनों के संस्कार उच्च नहीं है तो कैसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी बालिका उच्च संस्कार की होगी, क्योंकि उनको वही मिलेगा जो मेरे पास है। मैंने उनको दुख दिया है तो दुखी व्यक्तिमत्व बनेगा, मैंने उनको सुख दिया है तो सुखी व्यक्तिमत्व बनेगा। मेरे गुरुजी परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि मेरी माँ ने हमें चार बालकों को बचपन में प्रेम में डुबो दिया था, वी आर ऑलवेज ड्राउनिंग इन लव। इसलिए अब मैं जब भी मैं साधु बना हूं, संत बना हूं, जो भी कुछ सन्यासी बना हूं, मेरे पास देने के लिए केवल प्रेम है, क्योंकि मैंने केवल प्रेम ही प्राप्त किया है। अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन मिला होता, अगर मुझे बहुत दुखों का अनुभव करना पड़ता होगा, अगर मुझे हमेशा माता पिता का झगड़ा देखने को मिलता होता, तो फिर मेरा जो व्यक्तिमत्व है, पर्सनैलिटी है, वो कंटेमिनेट हो गया होता। इसलिए जब भी हमारा बालक कुछ करता है ना, गलत काम करता है, तो हम पूछते हैं कि कहां से सीख के आया ये, तो उनको पता होना चाहिए उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। इतनी नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए कि यस, अगर मेरा बालक कुछ भी करता है तो आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल एंड आई शुड वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव हिम एंड करेक्ट हिम। इतनी नम्रता अगर बालक माता पिता के अंदर होगी ना, तो अगर आपके अंदर वो नम्रता है एक्सेप्ट करने की, तो आपके बालक का भवितव्य उज्ज्वल है, याद रखना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेने में हिचकिचा रहे हो और कह रहे हो ये तुम्हारे जैसा है, वो कह रहे हैं कि वो आपके जैसा है ना, पति कह रहा है कि तुम्हारे ही गुण उसके अंदर आए हैं, और आप कहेंगे नहीं नहीं वो आपके आपके गुण उनके अंदर आए, नहीं नहीं आप कहेंगे आप सासू जी के गुण उनके अंदर है, आपकी माता जो है ना वो ऐसी है। इस तरह से अगर हम चर्चा करेंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो निश्चित समझिए कि आपके बालक का भवितव्य उज्ज्वल नहीं है, क्योंकि वो भी यही सीखेगा हाउ टू पास द बक, है ना, हाउ टू पास द बक। जिम्मेदारी नहीं लेकर उसको ब्लेम करना, इसको ब्लेम करना, इसको ब्लेम करना। इसलिए बालक जो है ना, वो उसके जो संस्कार है वो आपके मुख से 30% में होंगे। बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा स्कूल में टाइम पे जाना, बेटा बाहर जाकर ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, हाँ ये सारे आपके मौखिक संस्कार हो गए, मतलब बोल रहे हो आप। लेकिन आप बोल रहे हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना, हाँ, और जब बालक को बुखार आता है, या समझो आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ समझो आप लोगों को छुट्टी पर जाना है, सब लोगों को 7 दिन का वेकेशन में कोई हिल स्टेशन पर जाना है, तो आप क्या कह रहे हो, ये चिट्ठी लेके जाओ स्कूल में कि यू आर हैविंग हाई फीवर एंड डॉक्टर हैज गिवन यू सिक लीव फॉर 7 डेज। बालक को पता है कि हम लोग तो घूमने जा रहे हैं और बालक वो सिक लीव का सर्टिफिकेट उसके सामने लिखा जा रहा है डॉक्टर से और उसको स्कूल में पहुंचा जा रहा है। तो बालक को पता है कि मेरी मम्मी ने डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर स्कूल में दर्ज कर दिया है और मुझे बकायदा 7 दिन की छुट्टी सिक लीव दे दी गई है। तो बालक को क्या संस्कार हो रहा है कि ऐसे करना सही है, दिस इज ऑल राइट। इस तरह से झूठ बोलना बोनाफाइड है, ये जायज है, ये कर सकते हैं हम। तो आप एक तरह खेल रहे हो, बालक को कह रहे हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी, और आपके उसके सामने ही आप एक झूठा सर्टिफिकेट दे रहे हो। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बालक के व्यक्तित्व पर गहरा असर करती है। इसलिए 30% जो है आपका मौखिक गाइडेंस है उसके लिए, 70% जो बालक के संस्कार है वो आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हाउ यू आर बिहेविंग अलोन और विथ योर हस्बैंड और विथ योर मदर इन लॉ और विथ योर फादर इन लॉ और विथ योर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ये सब बालक देखते रहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पिताजी काम से आते हैं सीधा टीवी ऑन करके कुछ रोमांटिक पिक्चर देखते हैं तो बालक भी सामने बैठ जाता है, उसको लगता है ये ऐसे पिक्चर देखना सही है, अच्छा है, क्योंकि मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरी माताजी कर रही है, मेरे दादाजी कर रहे हैं, मेरे नानी जी कर रहे हैं। उस समय आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस समय आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस समय केवल आप कुछ कर रहे हैं और उसको बालक देखकर पूरा एब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए माता पिता और घर के लोग आइडियल हैं, आदर्श हैं, याद रखना। आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए आप क्या कर रहे हैं बालक के सामने। पिता और माता आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, माता उल्टा जवाब दे रही है, पिता उसको कुछ और जवाब दे रहा है, डोमिनेट कर रहा है या पीट रहा है, या दादी जी पिता का साथ दे रही है मम्मी को कुछ बोलने में, ये सारे संस्कार 100% बालक पर होते हैं। इसलिए बिहेवियर ये बहुत पावरफुल संस्कार है। आपके वर्ड्स उतने पावरफुल नहीं होते क्योंकि आपके वर्ड्स अगर आपके एक्शन के साथ मिलते जुलते नहीं है तो आपके वर्ड्स बेकार हो जाते हैं, आपके एक्शंस उस पर संस्कार करती है, ये ध्यान रखना। तो सब लोगों को, सब माता पिताओं को, प्रोस्पेक्टिव मदर्स और एक्चुअल मदर्स आज जो हैं, उन सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा हर एक वाक्य और हमारा हर एक व्यवहार, हर एक बिहेवियर आपके बालक पर डायरेक्टली असर कर रहा है। इसलिए पहले आप तय करो कि आपके बालक को आपको कैसा बनाना है, और जैसा आपको बालक को बनाना है वैसे आपको पहले बनना है, तब आपका बालक वैसे बनेगा जैसे आप चाहते हो। नहीं तो हम बालक के लिए मोस्ट आइडियल सपना देख रहे हैं और हम उस सपने पर है कुछ किधर भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मेरा बालक उच्च उच्च सच बोलने वाला क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग से श्रेष्ठ सत्यवादी नहीं है, तो हमारा बालक सत्यवादी श्रेष्ठ कैसे बनेगा, इम्पॉसिबल है। जो आप बो रहे हो ना वही उगता है, वॉट एवर यू सो दैट ओनली रीप्स, नथिंग एल्स कम्स। आप अगर करेले का बीज बोया है तो करेला ही आएगा, आम नहीं आएगा उसके अंदर कभी। अगर आपने आम बोया है और उसका सिंचन किया है तो एक दिन आम आएगा। इसीलिए बालक के व्यक्तिमत्व के लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये सबको एक क्या कहते हैं, ब्रह्म वाक्य है ये, पत्थर की लकीर है ये, हम सबको स्वीकार करना है इस बात को। अगर हम अपने बालक को वास्तव में एक श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको फल को सुधारना है तो पहले पेड़ को सुधारो, पेड़ सुधरेगा तो अपने आप फल सुधरेगा, अलग से फल को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही करेक्शन पेड़ में करो। इसलिए माता पिता पति पत्नियों का संस्कार पहले होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग पहले मिलनी चाहिए। हमारे मंदिर में, हमारे संप्रदाय में विवाह इच्छु यानी जिनको विवाह करना है, ऐसे कन्याओं का सेमिनार होता है टू प्रिपेयर टू बिकम अ वाइफ, टू बिकम अ डॉटर, डॉटर इन लॉ। और लड़कों की ट्रेनिंग होती है टू बिकम फादर, टू बिकम हस्बैंड, टू बिकम सन इन लॉ। ये सारे हमारे रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि लड़की शादी किया बाकी सबको भूल जाओ, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू गेट मैरिड तो आप एक सन इन लॉ बनते हो, आप एक हस्बैंड बनते हो, आगे जाकर पिता बनते हो। और औरतों के लिए पहले आप वाइफ बनते हो, फिर एक माता बनते हो, और साथ साथ डॉटर इन लॉ भी बनते हो, कितने सारे रिश्ते एक साथ आ जाते हैं। और हर एक रिश्ते का एक महत्व है, और हर एक रिश्ते के साथ में आप अपना कैसा व्यवहार करते हो, आपका बालक देखते रहता है कि मेरी मम्मी मेरी बुआ से कैसे व्यवहार करती है, मेरे पिताजी मेरे नानी से कैसे व्यवहार करते हैं, मेरे पिताजी मेरी माँ से कैसे व्यवहार करते हैं, मेरे पिताजी मेरी बड़ी बहन से कैसे व्यवहार करते हैं। ये सब कुछ बालक है ना। अभी हमारे एंटीना अगर 10 थे हमारे बचपन में, तो आज के बच्चों में 100 एंटीना है। यू विल एग्री विथ मी कि आज के बच्चे बहुत बहुत तेज है हमारे से, बहुत जल्दी जल्दी चीज पिकअप कर लेते हैं, और आपका हर एक वाक्य वो पिकअप करते हैं। मम्मी आपने उस दिन ऐसे पिताजी को कहा था, यहां तक कि आजकल के बच्चे मैं क्या कहूं आपको, वो कहते हैं, मैं आपको भी साफ बोलता हूं, माफ करना, आप सब माताएं मेरे सामने बैठी है, वो कहते हैं कि आपने अपने काम वासना की पूर्ति के लिए हमको जन्म दिया है। यू कॉल्ड अस, वी नेवर वांट टू कम हियर, यू कॉल्ड अस बिकॉज यू केम टुगेदर, यू वांटेड टू फुलफिल योर डिजायर, तो हमें परेशान क्यों कर रहे हो आप। इस तरह से आजकल के बच्चे बात करते हैं, बिकॉज वो टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मीडिया देखते हैं, 50 चीजें देखते हैं जो आपको आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आज का एक बहुत सारा एक प्रश्न से मुझे एक प्रश्न भी था कि इनसे कैसे बचाएं बालकों को, तो मेरा एक ही उत्तर रहता है हमेशा, आपके घर का फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो इन चीजों का परिणाम कम होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपके घर में अगर बहुत खुशबू है तो बाहर के बदबू वाले वातावरण से अंदर आएगा तो वो भूल जाएगा कि बाहर बदबू थी, क्योंकि आपके घर में खुशबू है। आपके घर में अगर बहुत सुगंधी सुंदर कलरफुल फूल रखे हुए हैं तो बाहर की गंदगियों को भूल जाएगा घर आने के बाद में। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि घर के संस्कार का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग रहे कि बाहर के गलत संस्कार लेकर जब वो आएगा वो नलिफाई हो जाए या डिलीट हो जाए या कम हो जाए। कम से कम वो बाहर देख रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि मेरी मम्मी पापा जो है ना बहुत ऑनेस्ट हैं, अपने जबान के पक्के हैं, किसी को चीट नहीं करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कितना भी संकट आएगा तो भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सत्यवादी हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, हम्बल पीपल। तो क्या सोचेगा, बाहर के गलत हैं, घर के लोग सही हैं। लेकिन बाहर के जैसे व्यवहार अगर घर में भी हो रहा है तो उसको लगेगा दोनों सही है, क्योंकि घर में भी वही कर रहे हैं, बाहर भी वही देख रहा हूं, तो मुझे वही करना चाहिए। जैसे पापा फोन पर बात कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हो, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो क्लाइंट को कैसा चीट कर रहे हैं वो देख रहा है, तो उसको पता चलेगा कि इसे आइडियल बिहेवियर, बिजनेस तो ऐसे ही किया जाता है। ये सारी चीजें मायने रखती है, आप बालक के सामने क्या क्या कर रहे हो। यहां तक कि समझो आपके घर में तीन महीने का बालक है और वो अभी दूध पीकर गहरी नींद सो रहा है, और आपको लग रहा है कि इतनी गहरी नींद सो रहा है तो हम अभी झगड़ा कर सकते हैं। तो पति पत्नी उसी कमरे में झगड़ा करते हैं, भी जोरदार एकदम। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्लीप टॉक। हमारे ISP इन्फेंट सिद्ध प्रोग्राम में हमको ये सिखाया गया कि बालक नींद में भी जो सुनता है उसका संस्कार उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और वो ही बिकम्स इनसिक्योर। अगर माता बहुत दुखी होकर रो रही है, पिता कुछ उसको गाली दे रहा है, और ये संभाषण वो बालक के सामने हो रहा है जो उसी कमरे में बालक सो रहा है, तो आप उसके अंदर एक सूक्ष्म संस्कार डाल रहे हो असुरक्षित महसूस करने का, टू फील इनसिक्योर। बालक फिर बहुत इनसिक्योर होता है, और वैसे ही बालक जब भी जग जाता है, बड़ा होता है और देखता है कि मम्मी झगड़ा पापा झगड़ा कर रहे हैं किसी बात पर, तो बहुत डर जाता है, ही बिकम्स वेरी इनसिक्योर एंड स्टार्ट्स क्राइंग। मुझे भी अनुभव ये बचपन का। तो बालकों को ऐसे हम व्यवहार करना चाहिए कि वो सुरक्षित महसूस करें, प्रेम को महसूस करें, सत्यवाद का अनुभव ले, प्रामाणिकता का अनुभव ले, तो वो सारे ना पत्थर की लगीर बन जाते हैं उसके चेतना में, उसके कॉन्शियस ने उसपे कॉन्शियस के अंदर वो पत्थर की लकीर बन जाते हैं। तो आप अभी सोच सकते हैं कि आपके साथ में बालक समझो 20 साल तक है लड़की, उसके बाद उसका विवाह करके आपको पति के घर भेजना है, तो 20 साल एक बहुत लंबा कालावधि होता है, जिसमें 20 साल और 9 महीने पेट में थी वो, फिर उसके बाद में दुग्धपान, उसके बाद में वो टॉडलर, उसके बाद में वो किशोर अवस्था, उसके बाद में पौगंड अवस्था, मतलब 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। और किसी ने प्रश्न पूछा था कि यस, इस अलग अलग अवस्था में ट्रेनिंग अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है, वो बहुत बड़े बड़े विषय हैं, इट्स अ मैटर ऑफ फुल व्हाट यू कॉल डिप्लोमा कोर्स यू कैन से। अलग अलग विषय हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में जब मैं पढ़ रहा था डिप्लोमा, तो ये सबके अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं। एक ही टेक्स्ट बुक है उसका, 0 to 5 years हाउ टू काउंसल द चाइल्ड, 5 to 10 years उसके शरीर में क्या क्या अंतर हो रहे हैं उसको क्या सिखाना है, 10 to 15 में वो सयाना या सयानी हो जाती है, बालिका सयानी होती है, लड़का भी प्यूबर्टी एज में आ जाता है, तो उसके साथ में मित्र बनना है। इसके मनुस्मृति में बहुत सारे श्लोक हैं, गाइडेंस दिया गया है हाउ टू बिकम फ्रेंड ऑफ द चाइल्ड आफ्टर 10 years ऑफ एज, और आफ्टर 15 years ऑफ एज इज नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग फादर एंड मदर, ओनली अटमोस्ट फ्रेंड यू हैव टू बिकम। 10-15 में क्या करेंगे, गाइड भी बनेंगे और फ्रेंड भी बनेंगे, लेकिन पिता बन के दंडा नहीं दिखाएंगे, उंगली दिखाएंगे नहीं, और 16-15 के बाद में तो केवल फ्रेंड ही फ्रेंड है, उसमें गाइडेंस भी नहीं आपका लेंगे नहीं वो, तो गाइडेंस का समय 0 to 5 और 5 to 10 है, और वो भी आपके स्वभाव से आपको गाइडेंस करना है, आपके व्यवहार से गाइडेंस करना है। ऐसा कहा गया है कि जितनी बातें कम होंगी और जितना व्यवहार होगा उतने संस्कार अच्छे होंगे, और बातें बहुत होंगी और व्यवहार उसके विरुद्ध होगा या विपरीत होगा या कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, तो आपके बातें भी फेल, आपका बिहेवियर भी फेल, दोनों आपको फेलियर देगा। इसलिए ग्रॉस रूप में सबसे पहले हमें संस्कार प्राप्त करने की आवश्यकता है, हाउ टू बिकम आइडियल मदर। हमारे सामने मैं हमेशा जीजाबाई का उदाहरण देता हूं कि कितने अच्छे अच्छे संस्कार दिए, अगर वो संस्कार नहीं दिए होते तो दुश्मनों की पत्नियों का कुछ गलत काम किया गया होता, लेकिन बचपन से वो संस्कार दिए गए हैं कि स्त्री हमारी माता है, चाहे दुश्मन की स्त्री हो या हमारी स्त्री हो, हमारी स्त्री हमारी पत्नी है, उसके अलावा सब हमारी माताएं हैं, चाहे वो 6 साल के लड़के क्यों ना हो वो भी हमारी माता है। ये जो मातृत्व का जो विचार है वो बचपन से हमारे बालकों को दिया हमने, तो फिर आगे जाकर माताओं का आदर करेंगे वो। और अगर स्त्री को एक भोग्य वस्तु के रूप में देखा जाए, देखना चाहिए कि ये भोग्य वस्तु है, दिस इज एंजॉयबल ऑब्जेक्ट, देन वो भी वैसा ही करेगा बड़ा होने के बाद में। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी, गुरु जी के गुरु जी जो हमारे प्रभुपाद जी है, वो कहते थे कि अगर मेल चाइल्ड है आपके पास तो कोशिश कीजिए उसको 5 साल तक माता का दूध पिलाइए, क्योंकि उसके आगे जब वो समझदार होता है तब तक दूध पीते रहेगा, तो वो जो माता के जो अवयव हैं शरीर पर जो स्तन है वो देखकर केवल माता की याद आएगी उसको, अब उसको देखकर सेक्स की याद आती है, लेकिन उस संस्कार से उसको उसको देखकर कि ये अवयव जो है, ये जो इंद्रिय है, ये माता की इंद्रिय है, तो सबको माता जी कहेगा वो और प्रणाम करेगा। ये हमारा संस्कार है हमारे वैदिक संस्कृति का, और ये हमारे बालकों को देना चाहिए। हमारी माता को छोड़कर सभी स्त्रियां, हमारी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियां हमारी माता है। हमारे संस्कृति में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी कौन है, परदारेशु मातृवत, हर पराई स्त्री को जो मातृवत देखता है, माता समान देखता है। परद्रव्येषु लौष्ट्रवत, यानी दूसरे की संपत्ति को विष मानता है, दूसरे की संपत्ति, आपका पैसा, आपका धन, आपकी जो स्थिति है उसको वो खुद के लिए एक विष मानता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे खुद के साथ व्यवहार करता है वैसे ही सबके साथ व्यवहार करता है, कि मुझे बुरा कठोर बोलना अच्छा लगता नहीं किसी से, तो मैं भी किसी से कठोर वचन नहीं बोलूंगा, मुझे चीटिंग अच्छा लगता नहीं है इसलिए मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, मतलब जैसे लोग मुझसे व्यवहार करें वैसे ही मैं दूसरों से व्यवहार करूंगा, जैसे मुझे अच्छा लगेगा आप मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसा ही व्यवहार वो दूसरों से करेगा। मतलब आत्मवत सर्वभूतेषु, खुद के जैसे सबके साथ, सर्वभूतेषु सबके साथ व्यवहार करेगा, उसी व्यक्ति को हमारे शास्त्र में ज्ञानी माना गया है। जो MBBS, MD, PhD, इंजीनियर, IIT ग्रेजुएट, इसको ज्ञानी नहीं माना गया है। कभी कभी ये सब डिग्रियों से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, गर्व उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, गलत व्यवहार करता है गर्व के कारण, दूसरों को तुच्छ लेखता है वो। तो ये हमारे संस्कार आज का, मैं अभी 50 मिनट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सारांश में ये जो 0 to 5 का संस्कार देना है ये भी बड़ा विषय है, 5 से 10 का अलग विषय है, 10 से 15 का अलग विषय है, 15 से 20 का अलग विषय है, वो हम अलग अलग चर्चा कभी कर सकते हैं, लेकिन सारांश रूप में आज का जो मेरा मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले खुद को देखो एज मदर एंड फादर, वॉच योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, स्टडी योर सेल्फ, फिर पता चलेगा कि मेरा बेटा ऐसा क्यों है। और अगर हम अपने को देखकर नम्रता से किसी काउंसलर के साथ बैठकर, अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तजुर्बेकार व्यक्ति है, उसके साथ बैठकर हम समझते हैं कि हमारे अंदर क्या त्रुटियां हैं और हमारे अंदर वो नम्रता है वो स्वीकार करने की और सुधारने की, तो ही हमारे बच्चों का भवितव्य उज्ज्वल है। हरे कृष्णा। अभी आप आपके इच्छा के अनुसार आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, और मुझे ये भी बताइए कि कल मुझे किस विषय पर चर्चा करनी है, तो वे कल मैं, क्योंकि हमारे पास बहुत विषय है ना, बहुत प्रश्न भी है, बहुत विषय है, तो आप बताइए, तो उस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा। हरे कृष्ण।
गार्गी प्लीज स्टार्ट। हाँ जी।
जस्ट वन मिनट मैम, मेरा आप सबसे अनुरोध है, काफी लोगों के माइक ऑन है, उससे काफी इंटरफेरेंस आ रहा है, आप अपने माइक ऑफ रखिए। जो भी आपको सवाल पूछने हैं आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके सवालों को जवाब देंगे। थैंक यू। हाँ प्लीज करिए।
प्रभु जी, ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास पहले से आए हुए हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन में हमारी फैमिलीज की तरफ से पूछ रही हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपने बच्चे के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए।
इसका एक गोल्डन आंसर है, गोल्डन एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड ट्रूथ, वो है समय देना। बिना बालकों को समय दिए उनके अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता है। आजकल के बालक इतने क्यों भहके जा रहे हैं, क्योंकि माता पिताओं के पास समय ही नहीं है। माता पिता खुद ही बिजी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत समय में बिजी रहते हैं, और नौकरानी के साथ में बच्चा रहता है, और कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, क्रेश में रहता है या हॉस्टल में रहता है। तो उसके फॉर्मेटिव उम्र में, जब वो छोटा सा बालक है, गोद में है, हाँ, तब से वो किसी के साथ में है, तो संस्कार किसके प्राप्त करेगा वो? उसके जो सर्वेंट है आपकी, जो नौकरानी है, वो किस घर से आई है, क्या सोचती है, वो सारे संस्कार उसको प्राप्त होंगे, क्योंकि वो अधिक से अधिक समय उसके साथ बिताता है। भले आपका बेटा है वो, हाँ, आप शायद MD होंगे या MTech होंगे, हो सकता है आपका बेटा आपका दिमाग लेकर वो आया है, लेकिन वो संग कर रहा है उस नौकरानी का जो कुछ भी नहीं है आपके सामने। तो आपके बालकों को अगर श्रेष्ठ संस्कार देना है, तो मोस्ट आइडियल स्पेंड टाइम, और स्पेंड टाइम के बाद में और एक कहा जाता है स्पेंड क्वालिटी टाइम। ऐसे नहीं आप बालक के साथ में हो, हाँ बेटा ये किताब पढ़ो, ये राइम पढ़ो, बहुत अच्छा है, और आप फोन पे लगे हो किसके साथ में, है ना, ये तो पति पत्नी के लिए भी अच्छा नहीं है व्हेन यू आर टुगेदर। उस तरह से जब भी आप टाइम दे रहे हो, दिल से दो, दिमाग से दो और मन से दो। भले आपको एक घंटा मिल रहा है समझो, तो आप पूरे 60 मिनट, 3600 सेकंड आपके बालक के साथ में मन से, बुद्धि से, आत्मा से रहो, तो फिर आपको जो चाहिए वो रिजल्ट आप बच्चे से निर्माण कर सकते हो। और बच्चे को समझने का प्रयास करो, और बच्चे को समझाने का भी प्रयास करो। पहले समझो बालक को क्या कहना है, क्या बालक की समस्या है, क्या किस कश्मकश से वो गुजर रहा है, और वो समझने के लिए समय दो, और फिर समझाने के लिए भी समय दो। डोंट हरी, हाँ बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, काम पे जाना है, ऐसा करना, आज मैं नहीं बता पाएंगी, बच्चा उस कश्मकश में ही रहेगा। तो समय देना बहुत जरूरी है, और समय देने कर भी हम बहुत चर्चा कर सकते हैं कि कैसे हमारे आजकल के बच्चे जो है वो केवल TV से और नौकरानी से सुनते हैं और सीखते हैं, और हमारे विचार, हमारे संस्कार उसमें कभी पड़ते ही नहीं, क्योंकि हम समय नहीं दे पा रहे हैं। संस्कार तब होते हैं जब संस्कार देने वाले व्यक्ति समय देती है संस्कारी व्यक्ति के लिए, तब संस्कार होते हैं, अपने आप विचार से नहीं होते वो, इट्स नॉट टेलीपैथी, यू हैव टू इन्वेस्ट विद टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सभी
फैमिली से, सभी लेडीज से
रिक्वेस्ट
है, जो क्वेश्चन आए उनमें से पूछ लीजिए आप।
जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू हैंडल बेबीज एंगर एंड टैंट्रम्स।
अगेन हाउ टू हैंडल
बेबीज, छोटे बेबीज का एंगर एंड टैंट्रम्स।
ओ, ओके इसका मैंने आपको कारण पहले बता दिया है, एंगर एंड टेंट्रम्स की जड़ जो है वो गर्भवती काल में होती है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ फर्स्ट आई थिंक यू एक्सेप्ट दिस कि उसकी जड़ जो है ना वो जब भी बालक पेट में आया था उसमें 9 महीने में क्या क्या हुआ उसमें उसकी जड़ मिलेगी आपको। चलो आप उसको अभी कुछ नहीं कर सकते, तो बालक को ना आहार में एकदम सात्विक आहार खिलाइए। जब बालक को हम तामसी आहार खिलाते हैं तो उसके टेंट्रम्स एंगर प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, मतलब आग में घी डाल रहे हैं, ऑल भड़के आग। इसलिए हमारे संस्कृति में मनुष्यों के लिए सात्विक आहार कहा गया है, ताकि उसका जो क्रोध की प्रवृत्ति है वो बढ़े नहीं। ओके फिर बाहर से उसको बढ़ावा नहीं देंगे आहार के माध्यम से। फिर घर वाले लोग जो हैं वो भी कभी टेंट्रम न थ्रो करें और खुद एंगर एग्जिबिट ना करें उसके साथ में। देखो वो खुद एंग्री और टेंट्रम थ्रो कर रहा है, बालक है, और आप भी जब भी बात करते हैं तो एंग्री बात करते हैं, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको पोषण मिल रहा है, यू आर एनकरेजिंग कि भाई सही है, उसको हवा दे रहे हैं आप। उसके बाद में अगर आपने सात्विक वातावरण निर्माण किया, सात्विक आहार दिया, तो बचा उसके अंदर की प्रवृत्ति, तो उसके लिए हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, उसको योग सिखाते हैं, उसको प्राणायाम सिखाते हैं, उसके साथ से कसरत करके लेते हैं। कसरत करने से जो गुस्सा है ना वो क्या होता है ना, उसको यू गेट चैनलाइज्ड, योर एंगर पर्सनालिटी, एंगर ओरिएंटेशन गेट्स चैनलाइज्ड। वो अपने जोर बैठक निकालेंगे ना तो थोड़ा सा उसका एंगर चैनलाइज हो जाता है। मैंने खुद अनुभव किया है मेरे युवा अवस्था में, क्योंकि जोश होता है ना, जोश, वो गुस्सा, जोश, एंग्री यंग मैन का जो प्रवृत्ति होती है ना, वो कसरत वर्जिश करने से बहुत डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है हाउ टू कंट्रोल एंगर, वो सात्विक आहार, सात्विक वातावरण और चिंतन, मनन, योग, प्राणायाम, ये बहुत आवश्यक है। और आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, वो नहीं बैठेगा, वो उसका मन स्थिर नहीं होगा, चंचल होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहने की। अभ्यास है ना तो कौन थे या वैराग्य ना उच्चते, उसका मतलब क्या है, अभ्यास करने से ही धीरे 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 उसका मन शांत होगा। तो मेरा ये व्यक्तिक अनुभव है, मैं भी बहुत एंग्री यंग मैन था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड एंग्री था 10th में 11th में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते समय। फिर मैं जिम्नेशियम में गया और 1.5 घंटा मैंने कसरत किया, थोड़ा बहुत कम हो गया। उसके बाद में मैंने 11th और 12th में 2 साल पूरी तरह से रोज 1 घंटा योगासन किया, एक्सपर्टली योगासन एंड प्राणायाम, काफी फर्क पड़ा, लेकिन पूरा नहीं गया। उसके बाद में मैंने भगवान के नाम का जप करना शुरू किया, उसमें बहुत फर्क पड़ा, दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि मेरे को खुद को पता था कि मेरे अंदर ये त्रुटि है, ये दोष है कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता हूँ, फिर गुस्से में पता है ना आप कुछ भी बोल लेते हैं, फिर वो बाद में रिपेंट करते हैं। तो ये आई वॉज अंडरस्टैंडिंग कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो जब मैंने ये मेडिटेशन आरंभ किया ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा उसके अंदर, क्योंकि मेडिटेशन और जो जप होता है ना वो आत्मा के सर पर काम करता है, आत्मा के अंदर जो दोष प्रवृत्तियां हैं उसको नष्ट कर देता है। शरीर का जो कसरत है वो शरीर से आपको बाह्य तरीके से ठंडा करेगा, योग ऐसा तरीका है वो मन और शरीर को जोड़ देगा, लेकिन जप चिंतन जो है ना वो आत्मा के अंदर प्रभाव करेगा। इसलिए बालकों को शुरू से बैठना सिखाइए एक जगह पर, ऐसे 5 सांस तक बैठो बेटा, 5 सांस आंख बंद कर ले लो, कुछ मत करो, फिर 10 सांस लेके बैठो, और धीरे धीरे ट्रेनिंग करना है उसको। लेकिन हर बालक को हर दिन एक जगह पर 5 मिनट बैठने का अभ्यास आपको कराना ही चाहिए, किसी भी स्थिति में, टू कूल हिम, टू मेक हिम कूल डाउन, कम टू द बेस लेवल, क्लोज आइज, नो एजिटेशन, कूल डाउन, टेक डीप ब्रेथ्स, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत सारा क्रोध की प्रवृत्ति सांस को कंट्रोल करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको देखिए, आपको कोई गुस्सा आएगा ना, आप एक 10 लंबी सांस लीजिए, टेक डीप ब्रेथ, आपको तुरंत पता चलेगा कि थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपको। तो कुछ गलत बात बोलने के पहले आप थोड़ा 10 सांस लीजिए और फिर बोलिए।
प्रभु जी, एक मेरा सवाल था।
हाँ यस माता जी,
टीनेजर्स को हैंडल करने के लिए अगर आप कुछ टिप्स दे सकें तो।
सबसे पहले टीनेजर्स के साथ मित्र बनिए, गिव अप योर कंट्रोलिंग मेंटालिटी। और मैं दिल से कह रहा हूं, ये आपको ऊपर ऊपर से नहीं, बेटा मैं तो आपकी दोस्त हूं, लेकिन शाम को 7 बजे जल्दी आना, देखो मैं आपको कह रही हूँ लेट मत करना। मतलब क्या है, खाली मुख से आप बोल रहे हो कि मैं आपकी फ्रेंड हूं, लेकिन आपका एटीट्यूड कंट्रोलिंग का ही है। बच्चे को आपको कन्विंस करना है कि आई एम नो मोर योर कंट्रोलर, हाँ, और आई एम योर फ्रेंड एंड वेल विशर, एंड आई ऑल्सो ट्रस्ट यू कि आप गलत काम नहीं करोगे बेटा, मुझे आपको विश्वास है। जब आप ऐसे कहोगे ना तो बालक पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि मम्मी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है कि मैं गलत काम नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं लेट नहीं आऊंगी, मैं बॉयज के साथ में अंधेरे में घूमने नहीं जाऊंगी। या आप ट्रस्ट कर दे रहे हो उसको कि आई ट्रस्ट यू बेटा, तो फिर वो चेंज हो जाएगी। लेकिन वो इतने स्मार्ट होते हैं कि आपकी कंट्रोलिंग मेंटेलिटी बहुत सूक्ष्म तरीके से वो सूंघ लेती है। दे अंडरस्टैंड योर कंट्रोलिंग माइंड वेरी वेरी नाइसली, इसलिए वो जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना आपसे दूर जाएंगे वो। अगर आपको उनको पास में लाना है आपके, तो सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग छोड़ देना है। कंट्रोलिंग का समय था, हाँ, ताड़ा, ये तो मतलब ताड़न, ताड़न करने का मतलब क्या, डांटना, वो समय 10 साल के तक ही होता है और आज वो और कम हो गया है। एज द कलयुग इज एडवांसिंग ना, अभी डांटने का समय भी और कम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आज के तारीख में 8 साल में ही लेडीज आर, गर्ल्स आर मेंस्ट्रुएटिंग, ओके, उनको वो सयानी हो जाती है, तो उस समय से ही आपको उनका मित्र बनना है। जिस दिन हमारी लड़की सयानी हो गई, जिस दिन हमारा लड़का प्यूबर्टी यानी कि जवानी के एज में आ गया, वो चाहे 8 हो 9 हो या 10 हो, उस समय से आपको मित्रता आरंभ करनी है। मोस्ट एक अगर संक्षिप्त में कहना है तो आपको ये बता रहा हूं, बस फ्रेंड बनो और उनको कन्विंस करो आपके व्यवहार से कि आई एम रियली योर फ्रेंड, एंड ऐसा बाहर से फ्रेंड अंदर से कंट्रोलर वो मत करना। और टीनेजर्स आर लाइक जेट प्लेन, अगर आपने उनको प्रेम दिया ना तो उनकी दिशा एकदम अच्छी दिशा में जाएगी, जेट गति से जाएगी, और आपने उनको कहीं भी डिस्टर्ब कर दिया ना, फिर वो 1 डिग्री से होंगे ना डिफ्लेक्ट, तो आपको पता है ना वो फ्लाइट कहाँ जाती है, आफ्टर डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिग्री वेयर द डेस्टिनेशन इज, यू नो। तो हमको बहुत सावधानी से जवान बच्चों के साथ में व्यवहार करना है, कभी भी उनको इंसल्टिंग बात नहीं करनी है, याद रखना, कितना भी आप सही होंगे कितना भी वो गलत होंगे, डोंट हर्ट देम, बिकॉज यू हर्ट देम यू लूज देम, हाउएवर मच राइट यू आर, इफ यू हर्ट देम इवन ऑन राइट थिंग्स यू विल ओनली लूज देम, दैट्स ऑल। और ये हम लोग ने अभी, मेरी बेटी 33 ईयर्स की हो गई है, मैं उसके 10 साल के समय से पूरा मुझे याद है कैसा उसका परिवर्तन मन का हो रहा था, एंड वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट। हम सोचते हैं कि अरे मैं इतना उसकी हित चिंतक हूं, आई एम द वेल विशर ट्रूली फ्रॉम द हार्ट, तो व्हाई शी डजंट अंडरस्टैंड, शी शुड नॉट डू दिस थिंग। यस, यू आर द वेल विशर, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपका तरीका जो है ना वो सही नहीं है। इसके वजह से आप रियल जेन्युइन वेल विशर हितैषी होने के बावजूद भी आपके बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं। मेक फ्रेंड्स एंड टीच बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय वर्ड्स, टीच बाय योर एग्जाम्पल हाउ टू बिहेव, हाउ टू डू थिंग्स, एंड डोंट कीप सेइंग हमारे बचपन में हमने ऐसे करते थे, हम कितना डरते थे पिताजी से, हम ये करते थे, हम वो करते थे, आपको, आप लोग क्या करते हो, आपके बच्चे में उम्र में तो मैं फ्रॉक बनाना भी सीख गई थी, आप में उम्र में मैं भी खाना बनाना सीख गई थी, मुझे पनीर का सब्जी आता था, आपको कुछ नहीं आता है। डोंट कंपेयर योर चाइल्डहुड विद देम, टाइम हैज चेंज्ड, माय चाइल्डहुड माय यूथ वाज डिफरेंट टाइम, आज वो अलग जमाने में जवान बन रहे हैं, यू कैनॉट कीप ऑन कंपेयरिंग। हमने कभी हमारे पापा को उल्टा जवाब नहीं दिया, आप ऐसे उल्टा जवाब देते हो, कुछ तरीका ही नहीं आपका। डोंट कंपेयर, यस वी नो यू एंड मी आर बेस्ट बिकॉज वी आर ओल्ड जनरेशन।
प्रभु, यहाँ पर मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी।
yes.
मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को कॉन्फिडेंस में लें, yes. और हम उनको एक ये चीज का आभास कराते रहें कि अगर कुछ गलत हो भी जाता है कहीं पर तो हम आपके लिए यहाँ है, बनाना बहुत जरूरी है,
सपोर्ट सिस्टम इज देयर बेटा, डोंट वरी, हम हैं आपके साथ, एश्योरेंस दे दो उनको, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे दुनिया में, थोड़ा घूम के आएंगे, लेकिन बाद में आपके पास ही आएंगे, याद रखना। अगर आपने उनको संस्कार दिया है, फाउंडेशन दिया है ना, थोड़ा सा सैर करेंगे वो दुनिया में, क्योंकि वो एक्सप्लोरिंग कैसा होता है ना, नया बालक कैसा है, नया बंदर कैसा होता है, सब जब घूम के आता है वैसे ही वो एक्सप्लोर करेगा, लेकिन आपने उसको एश्योरेंस दिया होगा ना तो आपके पास आएगा। और समझो वो जवान आदमी, लड़का आपका, टीनेजर गलती करेगा, समझो एक्चुअल बड़ी गलती करके आएगा, उस समय आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ये सारी दिशा बताएगा आपके जीवन की, बच्चे की। उस समय उसकी गलती में भी आपने उसको सपोर्ट किया ना, तो वो आपके साथ रहेगा। गलती में आपने उसको डांट दिया, पनिश कर दिया ना, वो जिंदगी घर के लिए आपसे छोड़ के आपको चला जाएगा, बिकॉज यू विल नॉट फील शेल्टर्ड। उसको आश्रय प्राप्त नहीं होगा, वो केवल डांट प्राप्त करेगा और आश्रय नहीं मिलेगा उसको। मतलब शरीर से नहीं, आश्रय तो आप दे रहे घर में, उसके मन से भावना से उसको आश्रय प्राप्त नहीं होगा, तो वो आपसे दूर चला जाएगा। ओनली ही विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, के ठीक है अपने पांव पे खड़ा हो जाऊंगा, इनको डिच करके चला जाऊंगा मैं, क्योंकि वो हर्ट जो है ना वो लंबे समय तक चलेगा उसके। और युवा अवस्था का जो हर्ट होता है ना लॉन्ग स्टैंडिंग होता है। अभी भी मेरे वो 16 साल की उम्र में मुझे पिताजी ने जो कहा था, मुझे अभी भी यहाँ पर दुखता है उसका सोच के। अभी का अभी कुछ करेक्शन नहीं उसका, मैं खुद पिता हो के ग्रैंडफादर हो गया हूँ, लेकिन वो 14 साल का जो पिताजी ने कहा था, अभी भी मुझे यहाँ पर उसका जख्म है, स्कार है उसके अंदर। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न?
हाँ जी, ये रवि कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने आप पर करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। रवि कुमार, नामकरण सिद्धू, आपने भी अपना हैंड रेस किया, आई थिंक आपसे गलती से हो गया था, या आपका कोई प्रश्न है?
कोई बात नहीं, आप अपने प्रश्न पर, आपके पास जो है पूछिए, तब तक
जी
समय का उपयोग कीजिए।
प्रभु जी, एक प्रश्न जी, ये राघवेंद्र जी के नाम प्रश्न पूछ।
प्रणाम गुरु जी।
यस हरे कृष्णा।
गुरु जी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मेरे दो बेटे हैं, ऑलमोस्ट सेम एज के हैं।
अच्छा।
एक 10 इयर्स है और एक 9 इयर्स है।
ओके।
मेरा प्रॉब्लम ये होता है, जब मैं उनको टाइम देती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, तो एक बोलता है मम्मा आप मेरे नहीं हो, आप बड़े भैया के हो। दूसरा बोलता है आप मेरी हो, आप छोटे के हो। और एक्चुअली मैं उस टाइम इरिटेट हो जाती हूँ,
नहीं
क्योंकि मैं उनको फिर हैंडल नहीं कर पाती हूँ।
ये कोई नई समस्या नहीं है, आप कोई नए एक्सक्लूसिव व्यक्ति नहीं है, आपके सबके साथ में ये समस्या होती है। एवरी चाइल्ड, अगर अंतर हो उनके अंदर या नहीं अंतर हो, तो 4 साल का अंतर हो तो भी लगता है कि मम्मी आप तो छोटे पर ज्यादा प्रेम करती हो। लेकिन आपको अपने ना उदाहरण से बताना है कि आई लव यू इक्वली। आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ केक लेके आएंगे दोनों के लिए, लेके आएंगे शर्ट, लेके आएंगे टी शर्ट, लेके आएंगे दोनों के लिए, लेके आएंगे जूता, लेके आएंगे रुमाल, लेके आएंगे, ऐसा आपको दिखाना है हर बार। ये प्रूव करना है कि आई लव यू बोथ इक्वली। हाँ, और डांटने में भी दोनों को इक्वल डांटना है, ऐसा नहीं कि इसको कम डांटना है ज्यादा डांटना है। तो ये अल्टीमेटली आपका चैलेंज है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बच्चों का कहना, उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है टू अट्रैक्ट अटेंशन। जब भी आप समझो, मैं मेरी मम्मी को बताया, मम्मी आप मुझसे ना प्रेम ही नहीं करती हो, इसके पीछे क्या हेतु है कि आप मुझ पे प्रेम करो, सबसे ज्यादा करो, है ना? तो बच्चा जब कहता ना मम्मी आप तो उसको ज्यादा प्रेम करते हो, आप यू आर ऑन हिज साइड, तो वो क्या कह रहा है, मुझे ज्यादा प्रेम करो।
दिस इज मैसेज। जब मैं छोटे वाले को ज्यादा अटेंशन देती हूँ, वो मतलब थोड़ा क्या चिड़चिड़ा सा, बड़ा अलग सा बिहेव करता है।
आपको ना एक बात ध्यान रखना है, जब बच्चे कुछ भी बोलते हैं ना, आपको चिड़चिड़ा नहीं बनना है, प्लीज अंडरस्टैंड। आपकी वहां पर ही हार हो जाती है जब आप चिढ़ते हो। बच्चा चिल्ड्रन सक्सेसफुल इफ यू आर इरिटेबल, इरिटेटेड बाय हिज स्टेटमेंट, ही इज सक्सेसफुल इन हिज पर्पस। तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है कि उसको एग्जिबिट नहीं करना है। आप मन से हो जाएंगे, लेकिन आप तन से बोलना है कि बेटा आई लव यू, आप उसको किस करो, इसको भी किस करो, उसको भी किस करो, आई लव यू इक्वली, यू आर बोथ माई सन एंड मून, जो भी आपको डायलॉग बोलना है बोल दो। और ये जताओ उनके साथ में कि आई लव यू इक्वली। तो आपको उदाहरण से ही, आपके एग्जाम्पल से ही बताना होगा उनको। लेकिन पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप पेशेंस को बैठते हो तो उसको पता चलता है कि मम्मी इरिटेट क्यों हो गई है, कि हकीकत में वो बड़े भैया से अधिक प्रेम करती है, इसलिए वो इरिटेट हो गई है। उसको मैंने पकड़ा है, अभी उसकी सॉफ्ट कॉर्नर को मैंने पकड़ लिया है कि यस यू लव माय एल्डर ब्रदर मोर देन मी, ये सच्चाई है, इसलिए आप इरिटेट हो गए हो। अगर वो सच नहीं होता तो आप इरिटेट नहीं होती। देखो, चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर प्लेइंग विथ योर साइकोलॉजी, बट यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू हैंडल देयर साइकोलॉजी।
धन्यवाद गुरुजी।
हरे कृष्णा, आई होप इट इज सैटिस्फाइंग टू यू.
यस ऑफ कोर्स सर.
यस
जी. अनाया जी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही है. अनाया आप पूछना चाहते
हैं? हेलो मैम, नमस्ते.
हरे कृष्ण.
नमस्ते सर.
यस
मैडम सर, मैं अपने बच्चे के बारे में आप पूछना चाहती थी. हमारी बच्ची 12 इयर्स की है.
7th standard में है.
12 इयर्स से हो गया उसको.
7th standard में.
हेलो.
हाँ 7th standard में है.
ADHD
में है.
7th standard में है. अभी थोड़ा सा हर बात में जिद करने लगती है कोई सी चीज के लिए भी. मैं जैसे मैं बोलती हूँ बेटा ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो. थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा बाबा दादी की तरह प्यार मिल गया है उनको, तो कोई बात को मतलब जैसे इग्नोर कर देती है हमारी बातें को.
एक ही मम्मी, एक ही लड़की है. अलोन?
नहीं, 3 बच्चे हमारे हैं. दो तो सेम एज के हैं, ये थोड़ी बड़ी हैं. डिफरेंट है इनको का, बाकी दोनों तो 6 इयर्स इनसे छोटे हैं.
देखो जिद करना ये बालकों का और एक तरीका है, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है आपसे चीज प्राप्त करने के लिए. आपको इतना जिद करके तंग करना है कि आप ले लो बेटा, चलो शांत हो जाओ, बस अभी मेरा दिमाग मत खाओ. That's what they want. That's what they want.
सामान के लिए जिद नहीं करते. जैसे मैं कुछ पढ़ने के लिए कर दूं तो अभी नहीं पढ़ना मम्मी, मैं बाद में कर लूंगी ना, आप परेशान ना हो, मैं कर लूंगी, ऐसा तो उसके क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है. मैं कहती बेटा ये नहीं करो.
प्रश्न क्या है
लूंगी?
आपका प्रश्न क्या है? डॉक्टर. उनको मैंने क्या देखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने उनसे सीखा है और देखा है. हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन बहुत ज्यादा आइडियल पेरेंट्स है. कभी मैं आपको इस प्रोग्राम में लाऊंगा उनको. बहुत ही कुशल पेरेंट्स है और पेरेंटिंग के बड़े अच्छे टीचर्स है वो. तो वो क्या करते, मैंने उनको देखा है कि वो ना बच्चों से बहुत ज्यादा बातें करके उनको समझाते रहते थे. वो हमेशा जब भी वो जिद करते थे कुछ करने के लिए जिद कर रहे हैं या ना करने के लिए जिद कर रहे हैं या कुछ चीज के लिए कर रहे हैं, तो दे वुड ऑलवेज एक्सप्लेन देम, बेटा ये अच्छा क्यों है, ये खराब क्यों है, या आपको क्यों नहीं करना चाहिए, या आपको क्यों करना चाहिए. दे वुड सेंड समटाइम्स यू नो सो मच टाइम दैट वी वुड फील कि अरे कितना बात करते हैं बच्चों से. बट वो बात करने के बाद बच्चा समझ जाता है कि ये मेरे हित में है. तो हमारे पास टाइम नहीं रहता, वी आर वेरी बिजी, हमको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए. बच्चा मैंने बताया ना, पढ़ो तो तुरंत पढ़ना चाहिए वो. हमारे पास नो टाइम इज देयर, ऑलवेज वी आर इन हरी एंड वी आर नॉट हैविंग पेशेंस ऑल्सो. कि मैंने कह दिया मतलब बच्चों को तुरंत पढ़ना चाहिए. हमको थोड़ा सा पेशेंटली बच्चों को समझाना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए. आज मैंने बोला इसलिए कल वो बच्चा तुरंत बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, लेकिन आपको पेशेंटली, आपको बच्चों से क्या अपेक्षित है, कैसा व्यवहार अपेक्षित है, उसके लिए उस वहां तक पहुंचने तक आपको लगातार बेसुमार प्रयास करते रहना चाहिए, पेशेंटली प्रयास करते रहना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा उसका.
ऐसा लगता है कि जब बच्चे एक एज में आ जाते हैं कि जब वो खुद के डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, तो उन्हें हमें सही और गलत बता के डिसीजन उन पे भी छोड़ देना चाहिए कि अब आप डिसाइड करिए, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, आपको जैसे लगता है अब आप कर लीजिए. आप क्या कहते हैं इस बारे में?
उसकी एक उम्र होती है, वो 15 साल के बाद उनको बोल सकते हैं आप.
जी.
अगर छोटे उम्र में ऐसा बोल दिया ना, तो यू आर एट अ ग्रेट रिस्क दैट दे विल डू रॉन्ग थिंग्स एंड देन यू विल रिपेंट कि मैंने क्यों उनको आजादी दे दिया. कुछ उम्र में आपको गाइड करके कहना है बेटा आप ऐसे करो आपके लिए अच्छा है. बाद में बड़ा हो गया ना, 16 साल हो गया, बोलना बेटा आप जो करना है करो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए. हर एक उम्र के हिसाब उसका आपका लैंग्वेज बदलना चाहिए. अगर आप 8 साल के बालक को ऐसे बोल दिया ना, तो जाके वो कुछ गलत ही काम करके आएगा.
नहीं, जब वो डिसीजन लेने लायक हो जाए उस समय,
एडोलेसेंट, उसको किशोर अवस्था कहते हैं, आफ्टर 15 इयर्स ऑफ एज, नॉट बिफोर दैट.
सर
थैंक यू.
किसी और का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाह रहा है? गुरु जी तब तक प्रश्न जो मेरे पास आ.
यस प्लीज गो अहेड.
कंपैरिजन पेरेंट्स जनरली करते हैं एक चाइल्ड का दूसरों चाइल्ड के साथ, मतलब अपने बच्चों करते हैं और दूसरों के साथ भी करते हैं, तो इस तरह के मतलब इस सिचुएशन को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें, करना चाहिए
कंपैरिजन, कंपेयर करते हैं
जी कंपेयर।
हाँ, मेरा आपको हाथ जोड़कर एकदम बहुत लंबा दंडवत प्रणाम करता हूं मैं इस बात पर कि कभी भी अगर आपको अपने बालकों को अच्छा बनाना है तो गलती से भी सपने में भी कंपेयर मत करना। सबसे बड़ी बालकों को क्या कहते हैं ना, उसको लुक डाउन करने के लिए, उनके लिए एक क्या कहें उसको, संकोच पैदा करने के लिए एक चीज है, कभी भी कंपेयर मत करना, कभी भी नहीं। आपका बालक जो है ना वो वर्ल्ड का बेस्ट बालक नहीं हो सकता है। नेबर के बालक को 85% मिला, आपके बालक को 80 मिला। उसकी एक ब्रेन की कैपेसिटी है, उसकी एक व्यक्तिमत्व है, उसका एक लगन है, जो भी उसका अलग हर चीज एवरीथिंग डिफरेंट है, तो आप दूसरे के साथ में उसका कंपेयर मत कर सकते। उसकी नाक सीधी है, आपकी नाक टेढ़ी है, ऐसे भी कभी कभी होता है, वो कितना सुंदर दिखता है बेटो, मैंने सुना है, मैं आपको ये इमेजिनरी बात नहीं कर रहा हूं। पेरेंट्स लोग अपने अपने बालकों को भी कंपेयर करते कि वो कितना ब्यूटीफुल है, आप क्या कर रहे हो, आपका कोई ब्यूटी नहीं है, ऐसे भी बालक बोलते हैं, क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है कि हमारी बच्ची इतनी सुंदर क्यों नहीं है। तो मैच्योरिटी उसमें है कि आपको भगवान ने जो भी आपके गोद में दिया है वो आपके लिए बेस्ट है, उसको जिस स्थिति में भी है उसको दूसरों को बड़ा दिखाकर उसको नीचा मत दिखाओ, उसको वहां से ऊपर आने के लिए हेल्प करो। कंपैरिजन इज, अभी आप खुद है, देखो आप खुद माता यहां बैठी हुई है, अगर मैं आपके पास यहां पर कंपेयर करूंगा कि आप ऐसी है वैसी है तो सब लोग दुखी हो जाएंगे यहां पर। इंस्टेड ओनली अप्रिशिएट। कंपेयर में क्या होता है, कंपेयर का एक प्रिंसिपल है, कंपेयर में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ऑलवेज व्हाई यू कंपेयर अदरवाइज, इफ देयर इज सिमिलैरिटी यू डोंट कंपेयर ना। तो ये सबसे बड़ा रोग है, उसको देखो कितना पढ़ाई करता है, उसको देखो कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसको देखो कितना अच्छा खेलता है, वो देखो कितना अच्छा गाता है, तुम तो बिल्कुल बेकार लड़के हो। ये हमारा नॉर्मल टेंडेंसी है, बिकॉज वी वॉन्ट अवर चाइल्ड टू बी बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बेस्ट सिंगर, बेस्ट इन स्टडीज, बेस्ट इन हेल्थ, बेस्ट इन ईटिंग, एवरी सिंगल थिंग यू वॉन्ट बेस्ट, वाइल यू आर नॉट बेस्ट ऑफ एनीथिंग। इसलिए ये कंपेयर की रोग से मुक्त हो जाइए, चाहे आपका बालक 5 साल के नीचे हो, 10 साल के नीचे हो, 15 साल के नीचे हो, 20 साल के नीचे हो। कंपेरिजन आउटडेटेड, नॉट प्रिस्क्राइब्ड।
गुरु जी एक प्रश्न है, एक हमारी लेडी ने पूछा है कि उनका बच्चा झूठ बोलता है बहुत, वो प्यार भी करती है बच्चे से, डांटती भी नहीं है, तो आप तो झूठ बोलने की आदत से कैसे उसको हटा सकते हैं।
मैं आपको एकदम मेरे आंसर जो भी होंगे ना, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ कि मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ, मैं किसी को दुखाना नहीं चाहता, लेकिन शायद हमने बचपन में झूठ बोला होगा, हमारी लाइफ में, हमारे व्यक्तित्व में वो होगा, ये उसका एक सूक्ष्म कारण है। अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अभी आपका बालक झूठ बोल रहा है, तो आपको ना उसको ये एश्योरेंस देना है, बेटा आप अगर सच बोलोगे तो हम आपको डांटेंगे नहीं, मारेंगे भी नहीं। वो झूठ क्यों बोलता है बताइए आप? वो सोचता है कि मैं सच कहूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी, पनिशमेंट होगा, इसलिए वो झूठ बोलकर पनिशमेंट बचा लेता है। तो अगर उससे आपको सच बुलवाना है, आपको उसको अश्योरेंस देना पड़ेगा, रियल अश्योरेंस, हाँ, नॉट झूठ मूठ का नहीं, नो मैनिपुलेशन, आपको सचमुच का उनको अश्योरेंस देना पड़ेगा, बेटा डोंट वरी, आपको मैं नहीं पीटूंगी या पापा को नहीं बताऊंगी, वो भी नहीं पीटेंगे आपको, आप सच बताइए, तो वो झूठ सच बोलेगा। और फिर आपको उसको समझाइए, अगर आपको वास्तविक उसके झूठ बोलने में आपको तरक्की लानी है या उसको इम्प्रूव करना है तो आपको उसको ये एश्योरेंस देना ही होगा, और वैसे व्यवहार भी करना होगा जैसे आपने कहा है, पनिशमेंट नहीं करना होगा। तब धीरे धीरे वो ना हिम्मत रखेगा अपने आप में कि मैं झूठ सही बोल के भी मैं मार नहीं खाऊंगा, तो फिर आपको उसके हृदय की बात पता चलेगी, अदरवाइज वो दहशत का वातावरण होगा ना कि हर झूठ पर, हर गलती पर पिटाई, तो फिर वो झूठ के ऊपर झूठ एक्सपर्ट हो जाएगा, वो आप भी हार जाएंगे उसके झूठ के सामने, समझेंगे ना क्या कैसे उसको मैनिपुलेट कर रहा है आपको वो। इसलिए। और एक बात है कि जितना जल्दी हो सके उतना उसको आश्वासन दीजिए, क्योंकि वो झूठ बोलते बोलते बड़ा हो गया ना, 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया ना, फिर उसके पर्सनालिटी के अंदर वो घुस जाएगा पूरा, उसके हैबिट हो जाएगी, उसका वो कैरेक्टर बन जाएगा। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल गिव हिम एश्योरेंस।
तो आज के लिए गुरुजी, yes. प्रभु जी, हम इस आज के लिए हम इस वेबिनार को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। कल यहीं से हम आगे शुरू करेंगे। कल भी आप हमें पेरेंटिंग के ऊपर ही अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करिएगा, ताकि हमारे लिए ये आज के चैलेंजिंग टाइम्स में बच्चों को बड़ा करना आई थिंक इज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड वी रियली सीक फॉर योर गाइडेंस ऑन दिस टॉपिक। सो कल भी हम इसी विषय पे चर्चा जारी रखेंगे, पर आज के लिए हम इसे समाप्त करते हैं।
एक प्रश्न है कि कल के लिए कौन से विषय पर चर्चा करूं?
अभी तक तो हम आइडियल सिचुएशंस देख रहे थे कि आइडियल पेरेंटिंग क्या होती है, और बट कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज बहुत इतनी आइडियल नहीं होती है, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम इट इज नॉट दैट आइडियल। तो उस सिचुएशंस में, क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी हर चीज के लिए हमें कंटिजेंसी प्लान चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर हम कुछ ऐसा, जो आज की परेशानी आ रही है, जो बच्चे हमारे बहुत मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, उनको हम किस तरह से अपने लेवल पे, काफी कुछ तो आज हमें समझने
तो आप में मिला अभी ऑफ द मीटिंग, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना थोड़ा सा गाइड कीजिए कि आपको ये 2-3 विषय पर चर्चा करनी है। तो फिर मैं पहले 45 मिनट्स पर बात करूंगा, फिर आप मुझे प्रश्न पूछिएगा। सम क्लू फॉर मी टू टॉक।
हाँ जी, राइट, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, एंड थैंक यू सो मच मिसेस मागो, मिसेस तिवारी, मिसेस शर्मा, एंड ऑफ कोर्स गार्गी एंड मिसेस मिश्रा। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, इसी को और आगे, आज की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, और तब के लिए हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। थैंक यू।